انسان سب ایک एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मने, सबके अंतर वही, उसी का नूर। भले और मंदे हम अपने कर्मों के अनुसार बन गए, मगर अगर हम बाहरी लपेटों से अगर बच जाए, आजाद हो जाए, लिबरेट हो जाए, तो सब ही के अंतर वो मौजूद। घट घट में हर जीव बसे संतन की हो पुकार, तो यक हकीकत एक ही हकीकत है जो सब में जलवागर हो रही है। जितने इख्तलाफात हमको मालूम होते हैं, ये सब हमारे जाती ख्यालों का या विम्स का हो, उसका सबब है। एक आदमी उठा, उसने ख्याल पेश किया, समझे, उसके 10 20 50 गर्वीला हो गए, वो एक नई क्लास बन गई। फिर उसमें जो जकड़े गए तरसब तंदिली के सबब से, बात वही थी, एक हकीकत का इजहार को पाना था जो सबके अंदर हो रही है। हम बाहर मुखी फैलाव के कारणों से ना वाकिफ हैं, ना जानने के सबब से। एक भाई उठा, एक मिसाल के तौर पर बयान करूंगा, एक हाथी था, हाथी कुछ अंधे इंसान थे, 5-7, किसी का हाथ उसके पेट पर पड़ा, कहले ये तो एक बैरल की तरह, किसी का सोट सून पर पड़ा, वो कहते ये डंडे की तरह, किसी का हाथ उसकी टांग पर पड़ा, कहा मार ये तो स्टूल की तरह, पिलर का पिलर है, किसी का कान पर पड़ा, कहा नहीं भाई वो तो पंखे की तरह। अरे भाई, जैसे जैसे आदमी ने ख्याल अनु आया बुद्धि के विचार से, या आंख नहीं खुली थी, तो उसके कई गर्वीदा गिरदे गिरद आदमी हो गए, वो एक नए क्लास स्कूल ऑफ खास बन गए। देखा नहीं, देखने वालों का एक ही मत, ना दो हुए ना दो हो सकते। फीलिंग्स में जो एहसास करते हैं, एहसासों में भी गलती हो सकती, इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, नतीजे खल करते हैं बुद्धि विचार की तफसीरों से, इंटेलेक्चुअल रेसलिंग से, फिर भी उसमें भी नतीजा निकालने में भी गलती हो सकती। एक युवा उठ रहा, हाँ भाई आग लग रही है या क्या पता है, पानी ही बुखारात बनकर उड़ रहा, देखा नहीं, दोनों में एक है, जस्ट नहीं ना। इसलिए महापुरुष जब भी दुनिया में आते हैं, जिस जिसने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसे दुनिया को पेश कर गए, तो महापुरुष हमेशा ही जब आते हैं तो जिन्होंने देखा है वो तो देखी बात कहते हैं, जिन्होंने खाली फीलिंग्स में है, बुद्धि के विचारों से इन्फ्लुएंस निकाले, वो अपनी अपनी क्लासेस बन जाती है। तो फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सब गलती का इम्कान है। सीन इज अबव ऑल, जो देखना है ये सबसे ऊंचा। मैं अमेरिका में गया, वहां एक बात हुई, एक बच्चा था कम से, उसकी जुती गुम हो गई, तो वो क्या कर, उसने मैस्टर की बड़ी डिक्शनरी थी, उसको निकाल को फोड़ने लगा। पिता ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे थे, तो कह रहे जी मैं ढूंढ रहा हूं, कह रहे क्या करे जूती गुम हो गई, कह रहे भाई जूती गुम होगी डिक्शनरी में कैसे मिलेगी, कह रहे जब तुम भी कोई लोकल ढूंढते थे डिक्शनरी को खोलते थे कि नहीं। बात तो बड़ी मामूली सी है, मैंने तो बड़ा इकराज है भाई, हम क्या कर रहे थे, हम अपने आप को भूल चुके, हकीकत से भूल चुके, हकीकत हम में, हमसे कभी जुदा नहीं हुई, तो कहां ढूंढते हैं, किताबों में, कहां ढूंढते हैं, तीर्थों मंदिरों धर्म स्थानों में, है बात वही कि नहीं, जो चीज जहां वही मिलेगी, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विदारे हाथ, चीज कहीं और हो तुम उसको तलाश कहीं और करो तो वो तुम्हें कैसे मिल सकती है। कह कबीर तब पाइए जो भेज दीजिए था, अगर इस राज के बातों को जिसने देखा है पाया है और उसको साथ ले लो तो और मिल जाए। वो क्या कहता, वो कहता भाई वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा, वो हम से कभी जुदा नहीं हुआ। चलो अंतर, वो तुमको बाहर की साधनों में नहीं लगाता। वो पहले दिन तुमको कहते हैं कि घाट से चलो, वो अदृश्य रघोचर बाहर जितना फैलाव है ये उससे दूरी, वो इसमें भी उसी का इजहार है। पर जब तक वो आंख न बने जिससे वो नजर आ सकता है, उसकी सूक्ष्म भी ना बने वो नजर नहीं आ सकता। तो जब तक को राज का वाकफ अनुभवी पुरुष ना मिले जो देखता है और दिखा सकता है, तब तक तुम देखने के काबिल नहीं हो सकते। तो महापुरुष में यही अर्थ कर रहा था, कई किस्म के महापुरुष दुनिया में आते हैं। एक तो वो है जो तुमको राव रसम शरीरों की समाजों की बतलाया करते हैं, इस तरह से शक्ल बनाओ, इस तरह से बाहरी रस्म और रिवाज अदा करो, इस तरह से पूजा करो, इस तरह से ऐसा करो वैसा करो। ये बहुत सारे महात्मा है इसी क्लास के मिलते हैं आपको, ये भी मुबारक है। ये क्लासें किन्होंने बनाई, मैंने अभी अर्थ किया था, जैसे जैसे विम्स किसी के हुए वैसे वैसे उसके गर्विदा पुरुष जो हुए वो अलग क्लास बन गई। जब जकड़ में आ गए तंगदिली और तासुब से भाई भाई के प्याले जुदा हो गए। आप सिद्धांत बड़े खूबसूरती से इस बात को बयान किया है, या हकीकत जल बगर दरकुफ हो इस्लाम अस्त बस, एक हकीकत सब में समा रही। जितने इख्तलाफ आते मदायब जुमला अब हम अस्त बस, हमारे विंस का नतीजा आज तक सब का है शेख व बराम से जुदा, तसब और तंजिली के समाज से भाई भाई के प्याले जुदा हो। वरना दर मै खाना यक ताकि यक जाना, नहीं तो उस प्रभु के मै खाने में एक ही साथी पिलाने वाला और एक ही शराब देने। तो साथी और शराब दो का जिक्र है, खुवार कहो और अनुभवी पुरुष कहो। तो जिस नशे को हमने पाना है वो किसका है, वो आत्मरस है कहो, वो नाम का खुमार है कहो, परमात्मा एक नशे का समुद्र है खाते महात्मा कहो। उसी जाते हाथ से हम भी कर रहे हैं, हम भी आनंदमय है नशे के स्वरूप में। चमचमरे साहब ने फरमाया है एक जगह कि मुझ में वो मस्ती है वो नशा है, अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, मेरे जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे उसकी रोटी जिस तनूर में पके उसमें से आनंद के शोले निकले। खाने वाले का जिक्र नहीं किया, साजिंदा पजिंदा उसके परोसने वाला और पकाने वाला मस्त हो जाए। अरे वे कुछ है जिन्होंने उस नशे को पाया है, गुरु रामदास का फरमाते हैं कि अगर उनको सारी दुनिया की दौलत कतर करके ढेर लगा दो एक तरफ, सब पहाड़ों के सोना चांदी हीरे ज्वाला और सब समुद्रों के मोती और कीमती चीजें एक या ढेर लगा दो, उसको कहो भाई बताओ तुमने हरिदास को पाना है उस खुमार को पाना है कि ये चाहते हो, कहते तो देखेगा भी। तो उस रस के दिलाने वाले महापुरुष भी दुनिया में आते आते रहे आते रहे। तो आपने फर्क देखा, मैं तो यही अर्ज करूंगा, अगर समाज गुरु भी सही तौर से प्रचार करें तो भी दुनिया में सुख हो जाए। मगर तंगदिली और तारसुम के सबक से कि मेरा दड़बा अच्छा है वो कहते मेरा दड़बा अच्छा है, उधर ना जाना वो कहते उधर ना जाना, मतलब क्या है, आमदन कम न हो जाए। देने वालों का कभी कोई झगड़ा नहीं हो, एक देने वाला हो दस देने वाले हो खुशी की बात, लेने वालों में झगड़ा कि मेरी आमदन कम होगी वो कहते मेरी हो गई। तो अनभरी पुरुष दुनिया में आया करते हैं, जो नशा बांटने आते हैं वो लेने नहीं आते देने आते हैं। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है कि एक हंस एक कोदरे के खेत पर आ बैठा, तो जो जिमीदार था भोला ना वाके डंडा लेके गिर्द हो गया, अरे भाई यहां से उड़ जाओ। कहते भोले किसान को ये पता नहीं कि हंस मोती खाया करते हैं, कोदरा नहीं खाया करता। ऐसे ही माफ करना, ये जो तंगदिली और तासुब की जंजीरों में जकड़े पड़े पुरुष समाजों में हैं, उनके समाज से भाई भाई के प्याले जुदा रहे हो रहे हैं, नहीं तो हर एक समाज के सामने एक ही आदर्श है, क्या? प्रभु का पाना। परमात्मा ने इंसान बनाया, आत्मा देहधारी, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात, रातें पाते हमने बनाई। ये स्कूल ऑफ थाट थे, ये स्कूल थे, कॉलेज थे, जिसमें हम दाखिल हुए थे, मुख्तलिफ समाजों के वर्ष क्या थी कि प्रभु को पा, प्रभु के पाना तो किनारे रह गया, समाजों के पुजारी बन गए, तंगदिली और तासुब के सबसे भाई भाई के प्याले जुदा हो, हकीकत से दूर हो गए, वो नशा ना पा सके। नतीजा क्या हुआ? आप जब भी आए इसी ख्याल को पेश करते रहे। गुरु नानक साहब मुल्तान तशरीफ ले गए, वहां बहुत सारे पीर फकीर रहते थे, तो वहां के पीरों ने देखा कि एक और ईसा बांटने वाला आ गया। मैंने अभी अर्ज किया था कि लेने वालों का झगड़ा है, देने वालों का कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने क्या करें, एक दूध का प्याला नको नक भरकर भेज दिया, तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं, मुल्तान पीरों से ऊपर है आगे ही। तो गुरु नानक साहब ने क्या किया, एक चमेली का फूल ऊपर रखे, जाओ भाई मैं सबको खुशी हूं। तो अनुपुर जब आते हैं वो जातों पातों को तोड़ने नहीं आते, ना बनाने आते, सबको खुशबू देने आते। अब देखें कई किस्म के महात्मा हुए थे। अगर समाजी गुरु भी सही प्रचार करें, सैकड़ों आशिक हैं, जिला राम सबका एक है, जुदा है काम सबका एक, तो भाई आप जो समाजों में दाखिले किस लिए हुए? प्रभु को पाने के लिए, मन इंद्रियों के घाट पर जो आप बह रहे हैं उससे निकलने के लिए, क्या और कोई गल है? यही वर्ष सबके सामने है। अगर सही प्रचार समाज के प्रचारक लोग करें तो कोई झगड़ा नहीं, सबसे प्यार हो जाए। सारे समाजों के सामने यही पेश ये नजर है, क्या परमात्मा को मिलो। कैसे मिलता? सब कहते प्रेम से मिलता, परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उस रात हकीकत रहा है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और उसके पाने का जरिया भी प्रेम है। दसम गुरु साहब ने बड़े खुले लफ्जों में फरमाया, साथ कहूं सुन ले और चले, जिन प्रेम की हो तिन ही प्र पाओ। क्या है भाई, मैं तुमको सच सच की बात कहता हूं, सुनो कान खोलकर, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पा। अरे यही क्राइस्ट भी नहीं कर, दो लव दिस लव सी गॉड फाइंड गॉड, जो प्रेम करते हैं वही प्रभु को पाते। फिर आप कहेंगे ये रस्म और रिवाज तीर्थ यात्रा इसकी क्या है चीज रही? अरे भाई ये इसलिए बनाए गए कि तुम्हारे अंदर प्रेम की उपजाने का कुछ सामान बने। सद साल इबादत को नवाजी ने कसे को इश्क नदार खुला राजी ने, सौ साल इबादतें करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, सच्चे मानो में तो पुजारी नहीं बन सकोगे। अगर ये सब कुछ कर करके तुम्हारे अंतर स्वरूप के लिए प्यार तड़प मेरा शोध नहीं जागी उसके पाने के लिए, तो तुम प्रभु के राग को नहीं पा सकते। तो ये सब कुछ करने का क्या मतलब है? पूजा बैठे शाम दो घंटे बैठ गए, चार घंटे एक आंसू की याद भी नहीं बहा, क्या फायदा? जिमनास्टिक है सारी उम्र करते रहो, तो सारे महापुरुष क्या कहते हैं, उसके पाने का जरिया प्रेम है। ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, एक लगाकर पढ़ो या साधारण पढ़ो, अरे भाई उसमें क्या दिया है उसको विचारो। उसमें उन महापुरुषों की जाति अनुभवों का जिक्र है, पर्सनल एक्सपीरियंस या लाग अपने से जो उन्होंने फाइल किए उनका एक फाइल रिकॉर्ड है, और बात उनका सच्चा वादव करना यही है कि जो वो कहते हैं उसको हासिल करो। रामकृष्ण परमहंस जी के पास मैंने कल ही जिक्र किया था कि एक आदमी आया, उसकी बगल में किताब थी, कहने ये क्या है? ये महाराज इसमें पानी की माहियत लिखी है, पानी की माहियत क्या है और कैसे बनता है ये? वो कहने लगे, हाथ कर कहने लगे, भाई इसको जरा निचोड़ो को पानी निकलता है कि नहीं। तरीका एक ध्यान का समझाने का तरीका, अरे भाई किताबों के निचोड़ने से भी कभी निकले, कभी पढ़ने पढ़ाने सारी और पढ़ते रहो, क्या हकीकत तुमको मिल जाएगी? हाँ, उन महापुरुषों के कलाम पढ़कर तुम्हारे अंदर रुचि पैदा होगी, शौक होगा, भी कुछ आया चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई कहते खाली फारसी के जो बस तुम्हारी कल्याण होगी। अरे भाई समाजों में बैठे हुए लोग जो सिर्फ इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि पाठ करने से तुम्हारी मुक्ति है, तो लाने गलत बस पूछते पढ़ो, ये पहला कदम है, ये अपराध विद्या में शामिल है, इसको उठाओ पढ़ो, सोचो पढ़ो इसमें क्या दिया, उसने दिया झुकाने महापुरुष इस तरह से प्रभु को पाया। वो पढ़ने से शौक होगा कि हम भी पाए, मैं शौक और रुचि के उपजाने के लिए तो पढ़ना ठीक नहीं, तो पढ़िए जैसे वर्ष वर्ष, पढ़िए जैसे मास, पढ़िए जैसी आज्ञा, पढ़िए जैसे सास, नानक लेखा एक गल हो तो इसका ये मतलब नहीं कि ना पढ़ो, इसका ये भी मतलब नहीं कि खाली पढ़ने ही से मुक्ति। पूजा पाठ रसम रवाज तीर्थ यात्रा धर्म स्थानों में जाकर गुनावाद गाने ये वो जो है इसलिए है तुम्हारे अंदर भावभक्ति बने, और बस अगर वहां जाने से भावभक्ति नहीं बने, खाली हाथ लगाकर आ गए तो फिर ये तो जमीन की तैयारी के लिए है, अपराध विद्या से मुक्ति नहीं है। याद रखो मुक्ति केवल परा से है, बड़ो अपनी समझ दिया साहब, सब महापुरुषों ने यही ध्यान दिया। अब मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि जिनने धर्म स्थान हमारे यहां वहां पर कोई अनुभवी पुरुष होना चाहिए, जो जाए उनको पता लगे बात क्या, हर चीज की कीमत क्या, वैल्यूज ऑफ लाइफ क्या है। मगर वहां पर माफ करना, पेट की पूजा के साथ से वर्गों से बंधे हुए लोग कहते भाई इसी में तुम्हारी हूं। मुझे कई भाई वैश्व में मिले, कहने लगे कि क्राइस्ट पर जो ईमान लाए उसी की कल्याण है। मैं क्या भाई जो क्राइस्ट से पहले आए उनके क्या हाजिर हो जाए? ठीक भाई ये कहते हैं गुरु नानक साहब पर जो ईमान लाए उसकी कल्याण है, अरे भाई पहले आए उनका क्या हाजिर होगा, जिन्होंने देखा ही नहीं सुना ही नहीं। अब तो मान लो सुनकर कुछ एतबार आ जाए तो परमात्मा के नजदीक तो सारी कायनात है, उसने आत्मा निर्धारित बनाए हैं। आत्मा को सुख तभी हो सकता है ये प्रभु से मिले, महान आत्मा से मिले। ये सोता वो महान सूत्र मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, जिसके अंदर तड़प छाओ तड़प पैदा होती है उसके लिए परमात्मा सामान करता। जहां आग जलती है ऑक्सीजन मन को आती देख क्या, जहां उसके पानी की छाओक है खाए वो किसी समाज में है, परमात्मा देख रहा है ये मुझे चाह रहा है, वो सामान करता है क्या, किसी मिले हुए को मिला देता। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि कई किस्म के महापुरुष हैं, एक जो वो हैं जो समाजी गुरु, समाजी गुरु गलत प्रचार करने के सबब से, उल्टे मिलाने के सबब से अलग अलग सामान बना रहे हैं, एक का मुंह उधर एक हवादार वहां न जाना, हवादार वहां न जाना। ये क्यों पैदा हुए? तंग दिली और शासन कुदवर्जियों की पट्टी बदी पड़ी, हकीकत दूर होती है, महापुरुष आकर फिर इसको जागृति देते, अरे भाई क्या कर रहे हैं, क्यों भूल में जा रहे हैं, और लोग उनकी मुखालफत करते हैं। ये कायदे की बात है, कोई नई बात नहीं। गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए और महापुरुष आए, जो वंश के बंदी हुए थे वो डंडा लेकर खड़े हो जाते। जितनी सच जबरदस्त दुनिया में आता उतनी ज्यादा मुखालफत होती, अगर मतलब की और तो कुछ क्राइस्ट आया जब वहां से निगॉक्स से गए, कहते निकल जाओ यहां से, ये मेरे खुदा का पिता का घर है, यहां बिजनेस मत करो, बिजनेस हो रही है और क्या। अन भाई कुछ तो सबको खुशबू देता, हमारे लिए फरमाया करते थे कि भाई कुएं आगे बहुत लगे पड़े थे, कुएं पर और नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है, जिस बात की कमी है वो उस तरफ मतवजे हो। तो इसलिए जब भी महापुरुष आते हैं वो कुछ न समाजों को तोड़ते न नहीं बनाते, वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सारी दुनिया ही मैं एक नशे का शोर उठाते मार रहा हूं, तुम्हारे अंतर भी तुम्हारा जीवन आधार है, अगर तुम बाहर से हटो अंतर्मुख हो इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ उस नशे को पा दो तुम्हारा जीवन सफल। वो क्या करता, साथ एक प्याला दे देता पीने को, लो भाई अरे भाई पुरुष का ये काम है तो हमारे हजूर इस क्लास के महापुरुष से दूर हो गए। उनके पास आत्मरथ था, नशा था, क्या कहा, नाम दिया, बिठाया, थोड़ा सा जब गाली मिल गई ना छोटी, अब थोड़ी मिल गई, ज्यादा बढ़ाओ। और मिसाल बनवाया करते थे, बच्चे को पैसे दिए, वो गवाया, फिर दिए, फिर गवाया, फिर दिए, फिर कहते वो रिजर्व रखता, उसको संभालो, जो नशा मिलता है उसको संभालो। संभालने का तरीका क्या, तो रोज वो बाकायदा अभ्यास करो और उसके लिए जीव से एक पास हो। तो दो किस्म के महात्मा आपको मिलेंगे, एक तो अपरा विद्या के महात्मा, समाज गुरु, उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है, मगर गल प्रचार के सबब से भाई भाई के प्यारे जुड़ा हो रहे हैं। बड़ा के महात्मा सब एक, वो दोनों भी दर्जे आगे हैं, कितने कितने ऊंचे गए, उनकी साइंस कहां से शुरू होती है आपको पता है, इंदों के घाट से नहीं बल्कि इंदों के घाट से ऊपर चल, वेद वर्ल्ड फिलासफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, जहां दुनिया के फिल्म से खत्म हो जाते हैं वहां परमार्थ की अलग वे शुरू होती, राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। अब जितना पढ़ना लिखना विचारना फीलिंग इन्फ्लुएंस ये वो है सब इंदियों के कारण के मामले, इससे शौक तो पैदा होता है कि कोई चीज है, अब उसको है को पाना है ना, तो सब पर पढ़ा कर नतीजा क्या निकलना है कि वो क्या कहते हैं सारे महापुरुष, सारे धर्मपुरुष के हमें क्या कहती है कि एक जात हक है, उसके कई नाम प्रभु लोगों ने रखे, भले आ जाओ जैसे तेरे नाम, जिस नाम जिसको बोध कराते हैं, समझाने बुझाते, विनोद करने के लिए बढ़ते, उसको पकड़ो, नाम तो ले रहे हो, नाम ही को पकड़ो, तुम्हारी कल्याण हो, नाम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, और किसी नाम से याद करो, बस जिसके ये नाम हो उसके साथ रखो, वो तुम्हारी आत्मा की आती है। अब आप समझे, तो हमारे हजूर जिसकी याद में आज आप बैठे हो, इस तरह जी के महापुरुष थे, इनमें भी आगे दर्जे बदर्जे मैंने अर्ज किए, कोई एक एक मंजिल गया, कोई दो गया, कोई चार गया, हमारे लिए सबके लिए इज्जत है, कंपैरेटिव वैल्यूज ऑफ प्रोग्रेस है, जितनी जितनी किसी ने कहे, जैसा जैसा किसको महात्मा मिला वैसे वैसे वो संकीत आ गया, मैरिटी केस गया था कुछ मदद रहा वहां पर, सब महापुरुषों से मिला, एक मुझे आज हस्ती मिली जो पतंजल योग करके प्रिंस के ऊपर जाती, ऐसा एक बताओ, बाकी इंटेलेक्चुअल रेस्टलर, कल मैंने जिक्र किया था, इस जिस्म पर आत्मा पर कई किस्म के कोश है, अन्मय कोश है, प्राणमय कोश है, मनुमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, जो जिस दर्जे तक ये सारी जब तक ना उतरे हकीकत आश्चर्य लगे, कई तन बदन के हमेशा बनाने में लगे रहते हैं, भाई ठीक है ताजीम है, इसको तंजीम में रखो, डिसिप्लिन में रखो, बाकायदगी में रखो, ये घोड़ा तुम पर सवार ना हो जाए, तुम इस पर सवार हो, मतलब तो ये इसके लिए मुख्तलिफ रस्म रवाज बनाए गए, ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो, प्राणों का संयम लंबा, तो संतों ने उसको शार्ट कर दिया, क्या इसकी इसको बीच में लाओ नहीं, जितने ज्यादातर जितने साधन बताए सबका तर प्राणों के, फिर मन बताया जाता, मन भागता फिरता उसको टिकाओ, वो कैसे टिके, जब तक तो उसको खड़े होने को कोई चीज न मिले वो कैसे खड़ा हो सकता, एक बच्चा है उसको मेरी कोठी में बंद कर लो, वो क्या करेगा, चीखेगा, पुकारेगा, दरवाजे तोड़ेगा, अगर उसको अंतर बड़ी दिल का चीज कुछ मिल जाए खड़े होने को कर रहे, तो मन हजार विचार करो, मन के ये चार ऐसे हैं, जित मन बुद्धि और अहंकार, तो विज्ञान में कोश का पर्दा भी और मन के दोनों का पर्दा तभी होगा आगे कुछ खड़े होने की चीज, कहीं जब ये सिद्धा भी मिल जाती है थोड़ी देर के लिए जरा आनंद आ जाए, तो वो भी एक पर्दा, जब तो वो भी ना फटे और आश्कार ना हो वो हकीकत, हमारी वो आंख न खोले जो हम उसके अनुभव करने वाले ना मिलेंगे, खड़े होने को कोई जगह नहीं, तो ऐसे महापुरुष आप देखें, कई महापुरुष मिलेंगे जो आपको अन्वय कोश इसी की तालीम और बाकायदगी में सिखाएंगे। यही तो चलकर प्राणों का संयम बतलाएंगे। कहीं आपको मन कैसे खड़ा होता है, ध्यान योग कहीं और बाकी क्रिया ये वो करते हैं, पर ये देखा जाता है कि मन खड़ा नहीं हो, थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ फिर भाग गया। हमारे जो मिसाल फरमाया करते थे, एक आग है उसकी स्वाह वो जो है हाथ रह जाती आग जलने के बाद, उठा के नीचे दब गई मालूम होता नहीं अंधेरी चली सिर पर जल दो, अगर आग पर पानी डाल दो अगर अंधेरी चले तो भी नहीं आग पर जल दो। ऐसी थोड़ी देर के लिए मन खड़ा उसको जब तक कुछ चीज न मिले ज्यादा लज्जतदार ये कैसे खड़ा हो सकती। गुंतर में ऑल ब्यूटी ग्लोरी लाइफ ब्यूटी महापुरुष आदमी पहले तो गुंतर होने का साधन देते हैं, वो कैसे साधन है क्या तालीम है इस बात का जिक्र शाम में को किया जाएगा। इस वक्त सरफ हजूर की जीव के मतलब कि वो महापुरुष थे, दुनिया में एक साथी आए थे नशा फैलाने के लिए बल्कि मुफ्त बांटने के लिए, ये कहना चाहिए। एक बार हजूर हमारे को अमेरिका से चिट्ठी आई थी कि आपके पास रूहानी दौलत है, हमारे पास दुनिया की दौलत बहुत है, आप हमको वो दौलत दो, हम उसके बदले में तुमको ये दौलत देंगे। तो हजूर ने क्या लिखाया, फरमाया कि भाई ये कुदरत की गिफ्ट है, दात है, जैसे और कुदरत की दातें सब मुफ्त है, हवा सूरज पानी, इस तरह ये भी कुदरत की दात है, ये मुफ्त छीन की जाएगी, हमें दुनिया नहीं चाहिए। अब वो टर्निंग पॉइंट पर आ रहे हैं, वो सब दुनिया की मटेरियल से तंग आ चुके हैं, कहते इसमें सुख नहीं नेचुरल नहीं। मैं अब जब गया था अमेरिका में पहले दिन ही मुझे चार देने, जिस दिन पहुंचा उसी दिन कहनी थी मैंने गॉड एंड मैन पर दी गॉड के आए चार किया। एक आदमी उठा मेरे सेक्रेटरी आया फॉर $5,000, मैंने बोला कब आगे आ जाओ दूसरी का, क्यों भाई किस लिए देते हो, अरे आपकी साइंस बड़ी ऊंची है इसलिए मैं दे रहा हूं। मैंने कहा भाई ये कुदरत की दात गिफ्ट ऑफ नेचर है, सब गिफ्ट ऑफ नेचर फ्री है इसलिए ये फ्री दी जाएगी। वहां पर आप देखे टास्क पेड होती फ्री नहीं होती, और पहले दिन ही जाऊंगे मैंने वो सब उनके पेट में खत्म कर दी, सब फ्री, एवरीबॉडी इज वेलकम टू कम। तो दूसरे पेपर निकले हेयर दे सेल्स ऑफ इंडिया जो कुदरत की दात मुफ्त देता, तो मेरे याद करने का मतलब है कि दातें मुफ्त मुफ्त तकसीम करने आता है, अगर पैसे लेकर तो अमीर ही खरीद कर ले जाए, मगर याद रखो अन वही पुष्ट देने आता है, लेने वाला कोई नहीं देता। तो अनुभव उस सैनिक महापुरुष ने जो मुफ्त बांटने आए, एक बार वो हमारे गांव में गए, बहुत बड़ी मुखालफत थी, होता है मुखालफत होती है सर, वो कुदरत आती है उसको स्टेप कर लेती है। तो सत्संग हो रहा था, हजूर बैठे थे, एक साहब उठे कहे महापुरुष कि आपकी बड़ी दया है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नाम के साथ जोड़ रहे हैं, मगर जो अधिकारी पुरुष हैं उसी को देना चाहिए बाकियों को नहीं, जो भी आपके पास जाता है निम्रता करता है जो आप दे देते हैं। तो हजूर फरमाने लगे भाई अधिकारी का सवाल हो तो मैं भी अधिकारी नहीं, निम्रता सत्व का शिकार होता है, मगर एक दौलतमंद आदमी अपनी दौलत को बांटता है लुटाता है तो भी इसमें क्या, अगर अधिकार का सवाल है माफ करना कोई भी अधिकारी न मिले चाहे लाखों में एक मिले, वो बीज डालते हैं। जैसे मुंशी साहब ने एक मिसाल दी, एक किसान सब बीज डाल रहा था, कुछ अच्छी जमीन पर पड़ा, कुछ सख्त जमीन पर पड़ा, कुछ झाड़ियों में पड़ा, जो अच्छी जमीन में पड़ा वो पड़ा हुआ, सख्त जमीन वाले को मुर्गी खा गए, जो झाड़ियों में थे वो 10 उगे भी गिरे पड़े। तो महापुरुष तो भाई बात नहीं आता, वो कहते सब जीव हैं, दुखी हो रहे हैं, किसी तरह से सुखी हो सके असुखी होने का समान सवाय आत्मा का परमात्मा से विराप की और कोई नहीं। आत्मा चेतन स्वरूप है, अगर इसको हमेशा के लिए सुख हो सकता है तो किसी चेतन सामान से जुड़ने ही से हो सकता है। वो आते किस लिए? लोगों को दुखी देखकर क्यों आते हैं? वो कौन होते हैं? ठंडे दिल से बिचारने वाली बातें हैं। दुनिया दुखी, आत्मा प्रभु की आशा, हमारा बच्चा कहीं दुखी हो उसकी आओ पुकार हम सुने, हम जाएंगे कि नहीं उसके पास? अरे भाई, दिल की जब आवाज निकलती है सब पुकारते हैं, हे प्रभु तू कहाँ है? कोई तन करके दुखी है, कोई धन कर दुखी है, कोई मन करके दुखी है, एक ना एक दुख सब दुखी। जब पुकार होती है तो याद रखो, हाथी की चिंगार पीछे पहुंचती है प्रभु तक, कीड़ी की आहट पहले जाती है। वो प्रभु देखता है मेरा बच्चा पुकार कर रहा है, अति दुखी है, तो क्या करता है? यहाँ पर एक मिसाल दी है। एक बादशाह था, और सोचने की बात यही है कि परमात्मा से हमको कौन जोड़ सकता है? जिसका या तो साथी हो, कोई शरीक हो, उससे बड़ा हो, कोई माता हो, पिता हो, बंधु हो, तब तो ठीक। जिसका कोई है ही नहीं, वो आप ही आप में आप है, फिर उसको कौन जोड़ सकता है? कहना पड़ेगा नहीं, उसी आप ही को किसी शक्ल में आना पड़ेगा। तो ये सवाल एक दफा किया गया कि भाई वो क्यों आ जाता, क्यों नहीं किसी को भेज देता? इसका सवाल एक बड़ी खूबसूरती से मिसाल में दिया गया है। एक बादशाह था, उसका लड़का था, यही सवाल उसे हुआ कि खुदा क्यों आता? मैंने उन्होंने क्या कि उसके बच्चे के लड़का था, उस बच्चे की शक्ल बना दी बड़ी अच्छी, दूर से बिल्कुल कपड़े उपड़े पहने बिल्कुल बच्चा मालूम था उसका। एक तालाब के किनारे उसको बिठा दिया, उसको एक ऐसी तार लगाई जो बादशाह उधर से वो बीच में गिर जा। ऐसे ही किया बादशाह, जब आया साथ वजीर अमीर भी थे, देखा बच्चा बैठा उसे किसी तार से जो बीच में गिर गया, तो बादशाह ने न ढील देखी न दिली, कपड़े समेत छलांग मार दी। देखा तो बच्चा नहीं था, जो कुछ था क्या लगे, ये क्या किया महाराज? आपके पास और थोड़े बंदे थे किसी को हुक्म दे देते? अरे भाई, प्रभु की आशा है आत्मा, जब वो प्रभु दुखी देखता है सब जीवों को, पुकार सुनता है, वो आ जाता है। अब तार कहते हैं और तीर, उसी पावर का किसी पोल पर उतर का इजहार करना। सब महापुरुषों ने इसी तरह अपने अपने तरीके से ध्यान किया है कि ये महापुरुष कौन होते हैं, कि वही ताकत किसी पोल पर बैठकर अपने साथ आप जोड़ती। मौला आदमी बनाया, हरजियो नाम पढ़ो रामदास, पहले हमें इंसानी शक्ल मालूम होती, मगर उसमें अंतर से वो प्रभु से जुड़ा होता, बाहर से दुनिया से जुड़ा होता। जो जुड़ा है वो जुड़ेगा ना। हमारे हजूर एक और मिसाल फरमाया करते थे, पीटर दी ग्रेट का जिक्र करते थे कि वो रूस का बादशाह था, वो हाल ही में जहाजानी का काम सीखने को गया, मजदूरों की शक्ल धारण की हुई थी। वहां और भी लोग थे जो मुल्क रूस के जलावतन किए हुए थे आदमी, उनसे बातचीत हुई, कहने लगा भाई देखो तुम अपने मुल्क को चले चलो तो क्या अच्छा हो। कहने जी हमको बादशाह ने वहां से निकाल दिया है, हम जा नहीं सकते। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, बादशाह मैं थोड़ा थोड़ा वाला हूं, उम्मीद है मानेगा, सिफारिश करेंगे। क्योंकि देखो बात करने में एक वजन होता है, एक कन्विक्शन होती है ना, कईयों को समझ में बात तो बड़ी पक्की पंच नहीं कर रहा है, दूर कुछ वाकफियत होगी। जिनको यकीन आ गया वो उसके साथ जब वापस आए साथ आ गए। जब रूस के शहर में दाखिल हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि बादशाह था, लोग सलामी करने लगे, आपस में बातें करने लगे, वो जो आए थे वापस उनको मालूम होता है इनकी शिकायत। जब वहां दारो खिलाफ में पहुंचे तो वहां जाकर बात बैठ गए, देखा ना मैंने जो कहा था, आपस में बातचीत, देखा मैंने जो कहा था, कुछ बात है। अरे बात तो यही, महापुरुष अपनी खबर आप दिया करते हैं। अगर वो अपनी खबर आप ना दें तो हमको कैसे मालूम हो सकता है वो कौन है। ज़रा सूरत में और हम जैसे इंसान हैं, इनको अपने आप पर छोड़ दो। किसी महापुरुष की बानी लो, गौर से पढ़िए, उसमें वो अपने जरा इशारे देते हैं। क्राइस्ट से पूछा कि तुम हमेशा अपने पिता का जिक्र करते हो, क्या अच्छा हो किसी दिन आप अपने पिता का हमको दर्शन करा देते। तो कहते हैं ग्रीव इंडिग्निट ओवर दिस, जोश में आए अफसोस, मैं इतनी मुझे तुम्हारे दरमियान रहा, तुम ये ना देख सके कि वही मुझ में बैठकर काम कर रहा था। क्या मान लिया ये नहीं भी यकीन आया, कम अज कम जो काम मुझसे हो रहे हैं, लोगों को मिल रही थी, उसी से अंदाजा कर लेते कि ये इंसानी काम नहीं किसी और का काम है। दसूल साहब ने बड़े साफ लफ्जों में कहा, दोते एक रूप हो गए हो, जितना भी हो अमरो आमन को ज्यो त्यो कह के मोह पठाए, जाओ भाई मैं सुत तो ये निवाजा, जाओ बच्चों को बच्चा साथ लो। कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर हम दूर घर के बेटी लाए हुकुम हजूरी, कोई इशारे दिए ना हजूर के मुतालिक। मैं आज सुना एक रात के समय था, डॉक्टर जॉनसन मैं दो ही थे उनके किनारे, हजूर लेते हुए थे। याद रखो महापुरुष को चुपचाप सुनते रहो, वो कभी कभी अपनी फौज में आकर कुछ इशारा दे देते हैं। फरमाने लगे भाई हम दुनिया में जब आते हैं तो अपना स्टाफ काम करने वाला साथ ही ले आते, काम करने वाला स्टाफ साथ ही ले आते। जब एक तरफ से हमको फतेह हो जाती फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता, क्या मतलब इशारा दिया ना। ये लोग कमीशन के साथ आते हैं, यहां नहीं बनते, लाइफ लॉन्ग बैक काम होता है। ये यहां का नहीं कि प्रेसिडेंट चुन लिया वोट्स के साथ प्रोपेगेंडा करके, ये तो कमीशन है। एक आदमी माफ करें एक थानेदार आवाज है, पहले उठ जाओ सब, तुम उठ जाओगे कि नहीं, कमीशन है ना। अगर 10-20 दिन उठो उठो क्या तुम कौन होते हो खबरा। तो जब महापुरुष आंद उसके बाद एक कमीशन, वो बात करता है हजारों खिलाफों में भी वो साबित, जो कुछ जरूरत नहीं थी उसके खिलाफ कुछ किया तो सच आकर सच। कईयों ने दो तरीके से बयान किया, एक तो ये थर्ड पर्सन में बयान किया, और कई कहते हैं मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा है। एक गीत था, जब खुदमसी में आते हैं आत्मा दो हम, जैसा तू है वैसा मैं हूं, ये आत्मा बारी खिलाफ से आजाद दे के वो मुझ में काम कर, मैं उसको भूल जाता हूं। उस खुदमसी में आके हद अदब से बाद वक्त उल्लंघन करके कहते हैं मन खुदा है, मन खुदा है, होते तो खुदा ही है, ये अलहदा बात नहीं। ज़ाहिर शक्ल इंसानी से हम उसको अपने लेवल से देखते हैं, इसलिए आपको अपना अंदाजा लगाते। अब हजूर के मुताबिक शनिदा हूं हमने सुना, तो दीदा जो बस है तुझे बड़े लोगों ने देखा, बोले आ चुना कि तो ही आ चुना न दीद सके। अरे वे जैसे आपसे वैसा किसी की चीज, जिनको अनुभव मिला वो कहते हैं ये परमात्मा से, जो आलम थे भाई इल्मियत बड़ी है बड़े आलम थे, जो सोशल वर्क है भाई बड़े ग्रहों की बड़े सियाने बड़े पंचेरी बात करते, अपने अपने लेवल से हर कोई उसको देखते हैं। छोटी उम्र में पहली बात मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब हजूर का जन्म हुआ, हजूर का अब मैं एक बाहरी पहलू से शुरू होने लगा। पहला पहलू जिस्मानी, जिस्मानी तौर पर जब वो पैदा हुए दूसरे दिन ही एक फकीर आया, ये शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो बात ये ना हो, आकर दरवाजे पर बैठ गया कि मुझे बच्चे के दर्शन कराओ। जैसे दस गुरु साहब के वक्त पैदा हुए थे तो फकीर आए थे ना, ऐसे ही एक फकीर आया, दरवाजे पर बैठ गया, इधर कहा कि हमें दर्शन कराओ। घर वाले माता कहा नहीं भाई, बच्चा दो दिन का कैसे दर्शन कराए। कह रहे मैंने तो जाने न खाना न पीना, दर्शन कराओगे तो खाओगे। जब दो तीन दिन गुजरे, आठ बार न खाया न पिया, हर मजबूर दर्शन कर, कहते ये खुदाई ताकत है जो आई है, मैं इसके दर्शनों को आया। ये हजूर का पहला पैदाइश से पहला सिलसिला। फिर बड़े हुए, अरे पहुनहार बिरवा की चिकने चिकने पास, जो कुछ होता वो पहले से हर एक आप अपना संस्कार याद रखो। बने जाते हैं बनाए से नहीं बनते भाई, ये अलग बात नहीं तो पीछे ग्रेजुएट है याद नहीं हो गया। मन ये कहो किसी हाथ लगाने पर या ये वो करने से ये चीज नहीं होती है। ये परमात्मा की दरगाह से नॉमिनेशन होती है, सिलेक्शन नहीं बाहर लोगों की, बल्कि नॉमिनेशन है। स्कूल में जाया करते थे, अपना निराले सीखा रहने मैंने कहा, किताब बगल में है, जा रहे हैं, क्या पता जो आज बगल में किताब लिए फिरता है कल सारी दुनिया का महिला वो स्टार बनेगा। राज कुदरती थी तो बाहर राज में कई ग्रंथों पोथियों का फायदा है। ये कुदरती बात है, जो उसके अंदर तलाश है ना, इन दी मेक राइप ऑफ हो चुकी है, वो क्लैरिफाई करने के बाद क्या। कई महात्मा ये रहा करते थे, जो अमरनाथ वगैरह जाया करते थे, इसके यहां ठहरा करते दो तीन चार दिन, खूब का बातचीत होती रहती। आखिर कोई फकीर मिलना उनके पास जाना, लंबी चौड़ी कहानी को छोड़कर, खासकर एक काबिले बयान जिक्र जो वाक्य है वो हजूर आप फरमाया करते थे कि पिशावर में बाबा कान हुआ करते थे, बाबा कान उनके मैंने भी दर्शन किए, मैं पढ़ा करता था उन दिनों जाना। उनका ये कहा था नंग जुड़ंग पड़े रहना, खुद मस्त जैसे रहना, आग जल रही है कहीं कपड़े फटे हैं कोई पता नहीं। लोग जाते थे बड़े बेताशा जवाब से, दराजी थी उनकी। मैं भी बाहर खड़ा हो जाया करता था किनारे पर, जब सब चले जाए फिर उसमें बुलाना में सदा। मैं कहा क्यों आए थे, मैं दर्शनों को आया था, बहुत जाऊ बस मेरे से तो इतना ही तलक रहा। हजूर फरमाया करते थे कि उनके पास गए तो कुछ न कुछ महात्माओं की भेटा करते हैं दिया। तो एक बार कहा, उन्होंने पूछा कि भाई बाबा कुछ दो। कह रहे भाई मिलेगा तो सही मगर कोई और देगा। कह रहे कौन दे, कहा मैं जाकर तलाश करूं। कह तुम तलाश नहीं कर, वो खुद तलाश करने को आएगा। थे बाबा जी बिहार से दरिया के किनारे रहते थे, उनका अपना जीवन तो अलौकिक था। अस्थी का खैर मरी पहाड़ में गए, वहां से गुजर रहे थे, हजूर फरमाते थे हमने ये सोचा कोई सरदार कोई सर आया है अपनी अपील दिया दरखास्त देने आया होगा, अपने काम में लगे रहे। तो उनके साथ एक और हस्ती थी, उनसे कहने लगे भाई हम इसके लिए आए। इसे मालूम होता नहीं ये सिलेक्शन है, पीछे से बने चले आते हैं। यहां पर वोट का सवाल नहीं या प्रोपेगेंडा का सवाल नहीं। तथा से चौथे दिन हमारे पास आए, उसने तुमको सलाम भाई फतेह वगैरह भी नहीं बुलाई, पहले क्या हुआ आएंगे। चौथे दिन आए अनुभवी पुरुष के पास सब चीजें साफ हो, जब सूर्य चढ़ता सब बादल हट जाते, सब जो कोर वगैरह होती है प्राश मिट जाती, क्लियर कट है। फिर बाबा कान से मिले तो कहने बाबा कान चीज तो मिल गई, मैं तुमने नहीं दी। कहा क्या हुआ, हम सब एक ही थे। तो इस तरह से बाबा जी से वो शायद 1894 में मिले। आपको करना जो कमाल उन्होंने किया शायद ही कोई कर सकता। घर से आना छुट्टी, जो तनख्वाह लेनी सब उनके हवाले कर देनी, महीने के महीने लाने तो भी पेश कर देना। उन्होंने हुक्म देना कि घर से फिरकर जाओ तो घर से फिरकर जाना, नहीं तो सीधे घर चले। उसका नतीजा क्या था कि सारी उम्र में शायद 6 महीने उनके घर से उनके पास रही होगी, 6 महीने लॉन्गेस्ट पीरियड। हम लोग छह महीने से अलादा भी दी रहे हैं। फिर वो फरमाया करते थे कि पहली शादी हुई मुकलावे से पहले वो गुजर गई, दूसरी शादी 25 साल के बाद हुई तो ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा हो गई। दिल दिमाग सही होना कुदरती बात है। चेस्ट इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। तो हमने ये देखना है कि उस महापुरुष की जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें पहले बाहरी ले फिर अंतरी ले। बाहरी लिहाज से पहला तो ये था कि वो ब्रह्मचर्य की रक्षा कमाल। आपको पता है ब्रह्मचर्य बड़ी भारी पर्वत, जिसका ब्रह्मचर्य सही है उसका दिल भी सही, दिमाग भी सही, जिस्म भी सही, बाद में वो तक 90 से ज्यादा साल की आयु तक शेरों की तरह गरजते थे। हजारों में आज तो लाउड स्पीकर बन गए हैं ना, उनकी आवाज ही काफी थी कहां तक जाए। तो ये सब वैसे भी शकुन नूरानी थे, बैठ जो देख लेता था कभी नहीं देखा, कह रहे भाई बड़ा अच्छा सरदार है, बड़ा अच्छा सरदार, जिन्हें कभी नहीं देखा शक्ल खाली देखा। महापुरुषों का कायदे की बात है, एक नूर होता ब्रह्मचर्य में भी एक नूर है और रूहानी नूर, दोनों मिलकर क्या कुछ कहना। तो उनके जीवन से सबसे पहला सबक हमारे पास जीवन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की रक्षा। वो एक और मिसाल फरमाया करते थे कि मेरे पास एक सरदार आया, एक आदमी आया तो कहने लगा कि मेरे 5 बच्चे हैं और मेरा केवल 5 बार ही ताल्लुक आया। इन्हें उसी में था और शास्त्र पर ज्यादा भी हमको यही कहती कि जब जब जिनकी शादी नहीं हुई हुई भाई गौर से सुनिए, वो तो बिल्कुल नेक पाक और पित्र रहे, ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रहे, मन और वचन और कर्म करके। राइस ने कहा अगर तुम ख्याल में भी एक बार एडल्ट्री का ख्याल करते हो, इट इज एज इट वे आर यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। मैं तो चल जाती है तो नहीं, कई बातें खाली करते रहते तो बातों से भी जाती थी। अरे भाई कर्म करके आप देखेंगे जिन्हें ऋषि मुनि महात्मा जाए तो दुनिया में आप ग्रस्त आश्रम में आए, त्यागी महात्मा कोई को याद मन उनका ग्रस्त आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। गौर से सुनिए, हमने ये समझा है कि ये विषय विकारों की मशीन है, नतीजा शादी हुई 2-4-6 महीने सत्यानाश हो गया, बीमारियों का घर बन गया। तो शास्त्र मर्यादा क्या कहती है कि जो भी ग्रस्त आश्रम में आए हैं, ग्रस्त आश्रम बड़ा ऊंचा आश्रम है, इसमें एक फल बाल बच्चों का पैदा होना भी है। गौर से सुनिए, जब बच्चा जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तब ताल्लुक हो, ये सबक हम भूल गए बड़ा भारी। जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई चालक न, ये ग्रस्त आश्रम की मर्यादा। शास्त्र मर्यादा ये कहते 2.5-3 साल एक बच्चे को लग जाएंगे, अगर ऐसे 2-3 बाल बच्चे आपके हो भी जाए एक नारी सदा कर। तो पहला सबक उनके जीवन में ये था ब्रह्मचर्य की रक्षा, उसे दिल भी सही दिमाग भी सही। आपको पता ब्रह्मचर्य की जो कीमती चीजें कैसे बनती है, 40 कतरे घी के 1 कतरा खून का बनता, 40 कतरे खून के 1 कतरा मिर्च का ये क्या बनता, उससे 40 कतरे उसके 1 कतरा इसका बनता, कितनी कीमती चीज। हम किस तरह इसको बेजाया करते, नतीजा क्या है, ना दिल सही ना दिमाग सही। मैं जर्मनी में गया, वहां मैंने देखे बच्चे को देख कर तभी खुश होते, स्त्री पुष्ट मर्द भी पुष्ट। मैंने पूछा भाई तुम क्या करते, कह रहे हम ये पालन करते। तो हजूर के जीवन से सबसे पहला सबक जो हम सीख सकते हैं ब्रह्मचर्य की रक्षा। दूसरा सबक उनके जीवन से, उनका मुताला हर एक धर्म पुस्तक का रहा, अपनी समाज के नहीं, सिख घराने में थे, श्री आदनंद की तालीम तो उनके घर की थी, पानी का तो विचार रहते ही था, पर साथ ही साथ शास्त्रों का, उपनिषदों का, मुसलमानी धर्म पुस्तकों का, اور در پشتوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. جن کو عام روٹین ان کا یہی تھا کہ 12 بجے فارغ ہونا, کھانا کھانا, پھر 4 بجے تک آرام کرنا. میں آرام کے وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ کتابوں کو مطالعہ کیا کرتے. ان کو بڑی بہادری, پیرلل تھاٹ, ہر ایک مزے سے یاد رکھو, دوسری دھرم پستکوں کا مطالعہ کرو, تم کو پتا ہے تمہارے پاس کیا چیز ویلیوز آف لائف. تم ایک دوسرے کے نزدیک آ جاؤ گے. میں مغرب میں گیا, وہاں لوگوں نے کہا کہ کرائسٹ سب سے اونچا. اچھی بات ہے. میں نے ان سے پوچھا تمہارے پاس اس بات کا ثبوت کیا؟ کیا نے اس نے کہا جی سن آف گاڈ. میں کروتا دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کو صرف بائبل سے ہی تعلق آیا ہے اور کسی دھرم پستک سے نہیں, کسی اور سماج کے جو ہے لٹریچر سے واقفیت نہیں, اس لیے آپ کہتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی اور مہاتما یہی بات کہے تو. میں نے اسے دسم گرو صاحب کا حوالہ دیا, میں ست تو ہے نواجا. پھر گرو ارجن صاحب کا حوالہ دیا, پتا پوت ایک ہی رنگ لی, پتا پوت نے ایک ہی رنگ لے لیا. پھر کہا پتا پوت رل کی نشان سانجو کرے تو ہو کر بیٹھ گئے. کبیر صاحب نے کہا تو کبھی رام ہوئے نبڑیو, ٹھکانے لیے ہیں نا. پھر بھائی ان کو کیا کہو گے؟ چپ کر. تو اگر ہم ایک دوسرے کے دھرم پشت سے مطالعہ کریں ہم کلوزر ہو جائیں, سمجھے. اور ہمارے حضور نے بھیا مجھے بھی لٹریری تھوڑا شوق تھا, ان کی کرپا سے انہوں نے ایسی ایسی دھرم پشت جو ابھی چھپائی میں آئی نہیں ان کو نکلوائی مختلف سماج وہاں اکٹھی کی جو ابھی تک چھپی نہیں. ایک شاید آپ نے بھی یاد ہوگا. تو ان کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا مختلف مہاتماؤں کے. جو بھی کسی مہاتما آتا ہے اس کو اس سے بتلاتے ہیں بھائی یہ بات یہ صحیح ہے. آپ دیکھیں میں یاد کروں دھرم پشتوں کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو محقق لوگ ہیں, متلاشی ہیں, جو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھو حقیقت تو ایک ہے, تو سوا یہ نہ بدلی ہے نہ بدل سکتی. یہ قدرت کی ساخت ہے, اس میں نہ ایڈیشنز نہ آلٹریشنز کچھ نہیں ہے. وہی طبیع ہے. ہم بھولتے رہتے ہیں, یہ علیحدہ بات رہی, برطف وہی رہی. جس جس مہاتما نے اس کا انوبھو کیا اس نے اس وقت کی زبان دانی میں اپنے وے آف ایکسپریشن جیسا ان کا اظہار کرتے ہر ایک آپ اپنا ہوتا ہے اس کو پیش کرتے رہے. ہم سب کو پڑھو, سب یہی کہتے کہ مہاپرش ایک ہی بات کہتے. پہلی بات پرماتما کہاں ہے؟ کبیر صاحب کہتے ہیں حج کا با ہو جائے با آگے ملیا خدا, مجھے رستے میں خدا مل گیا. کیا کہنے سائیں مجھے لڑ پڑیا, لڑنے لگ گیا. تم کن فرمائی گا ہے؟ تم کو کس نے کہا میں یہاں بس ہوں؟ میں تو تم میں ہوں سارے سنسار میں. آل از ہولنگ یا ڈیووشن نیل, سبھی جگہ متوارے جہاں بھاؤ بھکتی سے ساتھ سجدہ کرو. وہ کون سی جگہ جہاں پر پرماتما نے ایک جگ سچی تھی یا کوٹ سے؟ یہ ایک شریر ہری مندر ہے اور یہ جگت ہری مندر ہے. یہ بات سب مہاپرشوں نے کہی. اللہ ایک مہاتما ہوتے ہیں ہوئے ہیں مسلمان ہو, وہ کہتے ہیں میری امت کے لوگ جہاں بھی نماز کا وقت ہے پڑھ لیں. کس طرح منہ کرے کہ اس بات کو کوئی بھی قرآن شریف میں آتے ہیں. مشرق و مغرب کا سوال نہیں, بھاؤ بھکتی سے کرو اس کی پوچھ. جھپڑوں میں پڑھے کیا کچھ کیا رہے ہیں تو معاف کرو, نہ سمجھی ہے بھائی. وہ ہر ایک جگہ تو ہر ایک جگہ وہ ہے, تو کون سی جگہ ہے؟ مندر مندروں کے لیے ہمارے لیے کیوں عزت ہے؟ اس لیے وہاں بیٹھ کر اس کی گناہ بات جاتے ہیں. ان مندروں میں تو خدا نہیں رہتا, خدا تو ہر ایک جگہ ہے. میں انگلینڈ میں گیا, میں نے وہاں ڈاک دی. ہر ایک مہاپرش نے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے, گاڈ ڈز ناٹ ریزائڈ ان ٹیمپلز میڈ ان اسٹونز بائی دی ہینڈ آف مین. وہ پرماتما انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے پتھروں کے ساتھ جو مکان ہے ان میں نہیں رہتا. پھر کا اس نے کہا यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स, तुम परमात्मा की पूजा इंद्रियों के हाथ से नहीं कर सकते। तो एक प्रेमिनेंट शख्स थे, इंचार्ज एक चर्च थे, उठ खड़े हुए, विद वन वर्ड ऑफ योर्स यू आर थ्रोन एटम बम ऑन ऑल आवर चर्चेस। एक बात क्या कि भाई तुम्हारी चर्चियानिटी खत्म होगी। अरे भाई चर्चियानिटी सब अपरा विद्या खत्म होगी, इससे फायदा उठाओ, वैल्यूज ठीक है। मंदिरों में जाओ, बैठो, वहां धर्म स्थान बनाओ, वहां उसके बगैर और कोई ख्याल ना हो। यहां जो भाई आते हैं, मैं उनको यही ताकीद करता हूं कि भाई जब आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओ, दुनिया को भूल जाओ, वहां केवल प्रभु की याद और महापुरुषों की याद की, और कोई ख्याल तुम्हारे दिल दिमाग में ना। जब बैठोगे यकीन मिलेगी। कई भाई कहते हैं यहां आकर बैठे हमारा भजन बन जाता। अरे भाई जगह की पवित्रता का रखना जी तुम्हारे हाथ में। विवेकानंद जी जब अमेरिका से वापस आए तो शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, कहने लगे जो पाप हम बाहर दुनिया में करते हैं वो तो बख्शे जा सकते, जो पाप हम धर्म स्थानों में करते हैं वो खुदा भी बख्श नहीं सकते। उस जगह की पवित्रता को तुम जाहिर कर देते हो, कितना भारी पाप। तीर्थ स्थानों और धर्म स्थानों का कसूर नहीं, कसूर है इस बात का कि हमने उनको पॉल्यूट कर रखा, खराब कर रखा। तो जब धर्म स्थान में जाओ तब ख्याल को सार प्रभु की याद, फिर जो भी वहां बैठेगा वहां उसके ख्याल से। तो मैं याद कर रहा था कि अगर हम एक दूसरे महापुरुषों की वाणियों को बड़े प्यार से ओपन माइंड से पढ़े तो एक दूसरे के नजदीक हो जाए, और हम ये देखें कि सब ने एक ही बात कही, ये अलग बात नहीं, जहां जहां तक कोई पहुंचा वहां वहां तक रेफरेंस दे गए। मुझे कई भाई पूछते हैं फलाना महात्मा कहां पहुंचा, अरे भाई उनकी किताबों से यहां तक रेफरेंस मिलता, बस इससे ज्यादा मुमकिन हो या ना हो ये पता नहीं, यहां तक मिलता बैठता, इतनी हम कह सकते। शुरू शुरू में जब मैं हजूर की चरणों में गया था, मुझे लोगों ने सवाल किया कि हजूर कितने बड़े, मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं कितने बड़े, इतना मुझे जरूर पता कि मेरे लिए काफी से मिल जाए। सीक्रेट आप यही है, जब ऊपर बने ऊपर जाए फिर जब देख सकते जो अनुभव उसका बढ़ता, ये शुरू का ब्याज है मेरा। वेरी फर्स्ट डे पहले दिन जब मैं उनके हजूर के चरणों में गया था तो मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी, जो तलाश तो थी क्या ऐसी ए पर्सनैलिटी मूविंग इन ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ ए गुरु नानक बट वे स्टिल यू हैव फॉर मी नेक्स्ट। मैंने एक हस्ती चलती फिरती जमीन पर देखी है जो गुरु नानक की निम्रता धारण की हुई है, चांदी चौक लाई थी मगर इंतजार करो। मेरा हमेशा कायदा किसी महावीर जाओ देखो, देख कर बयान करो, देखा था कि कुछ सवाल नहीं, मैंने दो महीने के बाद मैंने यू कैन कम इन आ जाओ। जब मैं पहले मिला तो वो पहले कई कुछ सात बस कितनी पहले ही उनका दर्शन हुआ करता था, मैं समझता ये गुरु नानक आता। जब बाहर मिले तो वही शक्ल थी, हरा जितनी देर कर यही वक्त मौजूद था। तो मेरे याद करने का मतलब दूसरा सबक जो उनके जीवन से हम ले सकते हैं, मुताला करो अपनी धर्मपुत्रों का और दूसरों का, एक चीज मिलेगी। भाई मुझे शुरू से यही शौक रहा था एज ए स्टूडेंट, जब मैं नौ जमात में पढ़ा करता था तो एक मिश्र ने आया सवाल किया कि तुम किस आदर्श से पढ़ रहे हो, विद व्हाट एम यू आर रीडिंग। आपको पता हर एक एम्बिशन आपको अपने एम ने कहा मैंने तहसीलदार बनना, दूसरा कहे मैंने डिप्टी बनना है, कोई कहे थानेदार बनना है, कोई कहे जज बनना है, कोई बिजनेस ये। मेरी बारी आए मुझसे पूछे विद व्हाट एम यू आर रीडिंग, मैं क्या रीड फॉर नॉलेज है नवी जमात में क्या मुझे से नौवीं बात। इन्होंने एक टास्क दी बड़ी मत कि हमको पढ़ना नॉलेज हासिल करने के लिए, ग्रंथ पोथी पढ़ो उसमें क्या दिया देखो वो क्या कहते हैं। अरे भाई अगर ट्रुथ एक है तो सब एक ही चीज ध्यान करेंगे, दो हमें एक दूसरे से क्यों डरते, माफ करना हकीकत देखेगी। मैं एक बार शिमले गया वहां पर मगर मुकर में शाम के तीन चार दिन सत्संग नीचे जो मस्जिद थी वहां होना था। तो चार बजे सत्संग था, तीन बजे एक हमारा लीडिंग आदमी था वो टेलीफोन करता है कि महाराज पोस्टर बांट दिए गए हैं, सब मजबों वाले आ जाओ जो रूहानियत के मुतलाशी, हम क्या करेंगे, सब मजे सवाल करेंगे क्या करें आप, तो हम चुप चुप खर सत्संग करते। मैंने कहा भाई सवाल करेंगे, मैंने कहा कि तुम इस बात को गलत समझते हो तो तुम भी छोड़ दो, गलत है तो क्यों लगते पड़े, आएंगे तो जो आप दिए गए सत्संग चार पांच दिन हुआ शिमला लोअर शिमला में था, पहले दूसरे तीसरे दिन ही कोई आर्य समाजी भाई थे कोई ब्रह्म समाज थे कि भाई आपने बड़ी तरह हम इस बात को भूल रहे थे ये सारा हो गया। आखिरी दिन लॉर्ड ने सिख भाई को सोचे कल एक माइक्रोफोन चाहिए, मैंने उठाया अपने दिन क्या नहीं तो यही बात और भाई तो मैं याद कर रहा था कि हजूर के जीवन से हम क्या सबक सीख सकते हैं। पहला सबक तो ब्रह्मचर्य की रक्षा का था जो मैंने आपको खोलकर समझाया। दूसरा जो उनके जीवन से हम सब सीख सकते हैं वो ये है कि वो हर एक धर्मपुत्र का मुताला किया करते थे, रेंज ऑफ ख्याल जो था बड़ा वाइड था, इसलिए उनका सबसे प्यार। जब जब एक दूसरे के धर्मपुत्र से मुताला करोगे चीज तो ट्रुथ एक ही रही है, दो ना हुई ना दो हो सकती है। जब जब महापुरुष दुनिया में आते रहे उस वक्त की जवानदानी में अपने तर्ज बयान से पेश कर गए, उनके पढ़ने से हमें ये ख्याल होता है भाई सब हमें एक ही के पुजारी थे, झगड़े का के उसको राम कहो रहीम कहो कुछ और कहो ये कहो वो कहो उससे कोई डिफरेंस, दैट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो ये दूसरा सबक है जो उनके जीवन से हम सीख। तीसरा वो ये हमेशा फरमाया करते थे कि इंसान आत्मा रखता है और जिस्म रखता है दोनों, घोड़े पर जो सवार है दोनों रुकावों में मजबूत पांव रखकर सवार बन सकता है, दुनिया भी रहे वो भी रहे, ग्रस्त में जो आए हैं उनको दोनों तरफ पहलू देखने हैं। तो ग्रस्त मर्यादा सोचो और एक दूसरे के दर्द बांटना ये एक पहलू है, दूसरा अंतर्मुख अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़। जब भी ऐसे महापुरुष आते हैं यही तालीम देते हैं कि भाई जिस्म क्योंकि एक ही जैसी सबकी बनावट है, परमात्मा की तरफ से सबको एक जैसे हकूक दिए गए हैं, सब आत्मा निराली है ना इंसान है, इंसान इंसान में क्या फर्क है, ऑल मैन काइंड इज वन, सबकी बाहरी बनावट एक जैसी है, दो आंखें दो कान दो हाथ, बाहरी बनावट भी जिसम की अंदरूनी बनावट ही सबकी एक जैसी है, फिफड़े रखते हैं मेदा है दिल है दमाग है सब एक जैसी कंस्ट्रक्शन है, पैदा होने का भी जरिया एक ही है मरने का भी एक ही तरह से मरते हैं, किसी को बुखार चढ़ता है तो सबको एक तरह से चढ़ता है, ये नहीं कि एक समाज वाले भाइयों को एक तरह चढ़ता है दूसरे को दूसरी तरह चढ़ता, सबकी आत्मा भूल में हम भूल है अपने आप से ये कहते हैं, मन इंद्र के खिलाफ चढ़े पड़े हैं, अगर इसे लिबरेट कर ले हम अपने आप को जानने वाले बन जाए ये देखेंगे कि वही ताकत सब में है, हम उसमें है वो हम में है, ये आखिरी मंजिल। तो उनका प्यार सबसे होगा वो हमेशा विशाल हृदय रखते हैं, वो न किसी समाज को बनाते हैं न तोड़ते हैं, वो हर एक को पुष्टि देने आते हैं। जैसे मैंने पहले मिसाल अर्ज की है कि गुरु नानक साहब आए मुल्तान में तो वहां पर उन लोगों ने एक दूध का प्याला भरकर नको नक भेज दिया कि यहाँ पीर आदमी बहुत है तुम्हारी कोई जगह नहीं, तो उन्होंने एक चमेली का फूल दूध पर रख दिया प्याले पर के दे दो मैं सबको खुशबू दूंगा। जब अन वही पुष्ट वो एक समाज दूसरी ने वो सबको जिंदगी देने आते, उस भूल में जिस दुनिया भटक रही है उससे निकालने के लिए आते, वो आत्मा के लेवल से सबको देखते हैं, वो कहते हैं ये सब आत्मा दे रहा है, बाहरी समाजों के लेवलों से नहीं, आत्मा चेतन स्वरूप है सब, सबकी मानने के घाट पर गिरी पड़ी, इसको लिबरेट कर जिसने अपने आप को जाना उसने हकीकत को पहचान लिया, self knowledge receives God knowledge, but self knowledge is God knowledge. खुद शनासी खुदा शनासी सब आप उसे इसी तरह तवज्जो दिलाई. तो तीसरा सबक जो उनके जीवन से हमें मिलता वो ये था कि वो सबसे प्यार करते. सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो. सचो हस्ती सदगुरु किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर हकीकत शनास हो गई या हकीकत के इजहार की जगह बन गई, वो दुनिया को कैसे देते? सबको मिलाकर बैठते, क्योंकि वो आत्मा के लेवल से सबको देते हैं, जिस्म के लेवल से नहीं. जिस्म का लेवल किसी समाज का आपके जिस्म पर है मुबारक है, पर वो देखे सब आत्मदेधारी. सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिला लिये. ये उनकी शान देखी थी कि उनकी सामने सब समाजों के भाई इकट्ठे होते. वो हर एक समाज के भाई से मिलते थे, मुसलमानों से भी, ईसाइयों से भी, और जो भी महात्मा जहां भी थे मिला करते थे. याद रखो, जब महात्मा महात्मा को मिलता है वो एक और एंगल से दुनिया को देखता है. बाहरी रूप जिस्मानी तौर पर कोई न कोई लेबल है, खास खास मर्यादा रखी है, मगर मर्यादा एक तरबियत के लिए है, तहजीब के हासिल करने के लिए है, सेल्फ डिसिप्लिन को पाने के लिए है. उसको पाकर आखिर देह देहा से ऊपर चढ़ना, जब देह देहा से ऊपर आ गए तुम क्या रह गए? वजूद है पर सब समाजों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, मगर समाजों का तलक आपके जिस्म से है. उससे हमने ट्रेनिंग करनी है जिस्म की, एक हायर चीज के अनुभव पाने के लिए. ये स्कूल और कॉलेज है, राव मुबारक है. क्राइस्ट से सवाल किया लोगों ने कि भाई हमारा बादशाह हमसे खिराज मांगता है, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई आजकल का जो सिक्का कायन है उसको ले आओ. चलिए, जब सिक्का लाए तो सिक्के पर बादशाह की मोहर होती है, सीजर बादशाह था उसको. तो फरमाने लगे गिव अन टू सीजर्स दैट थिंग्स दैट आर सीजर. जिस चीज पर बादशाह की मोहर है वो उसके हवाले करो, तुम्हारी आत्मा पर परमात्मा की मोहर है उसके हवाले. ये नजरिया आज भरी पुरुषों. तो तीसरा, इसलिए वो कहते हैं कि एक नूर से सब जग उपजिया, काम भले कौन बने. उनका लेवल जब ये बनता है तो उसमें सब समाज है, सब मुल्क आ जाते. नो ईस्ट और वेस्ट, मैं मगरब में गया, वहां लोगों ने एक मीटिंग अरेंज की, स्पेशल गैदरिंग, जिसमें ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करना था. ईस्ट की तरफ से मुझे चुना, वेस्ट की तरफ से एक फ्रांस से आदमी ने आना. कोई पाक ऐसा हुआ गैदरिंग थी, उस वक्त वो फ्रांस वाला आदमी ना पहुंचा. तो वो कहने लगे नाउ वी लीव बोथ ईस्ट एंड वेस्ट टू यू, बच्चे मगर दोनों तुम्हारे हवाले आप. तो मैंने उनको कहा भाई इसमें शक नहीं, ये कहा गया है कि ईस्ट फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट एंड बोथ टू कैन कैन नाउ वी मशर मशर के लिए है, मगरब मगरब के लिए है, दोनों कभी मिल नहीं सकेंगे, ये प्रॉब्लम है. मगर मैंने उनको कहा भाई ये ईस्ट और वेस्ट हमने बनाया है, परमात्मा ने तो कोई नहीं बनाया. जब तक तुम टाइम और कॉर्डिनेशन में, तुम्हारे लिए मशरक भी है, मगरब भी है, शुमाल भी है, जुनूब भी है. अरे वो कौन सी जगह जहां वो नहीं है? सारी क्रिएशन इज होम ऑफ हाउस ऑफ अरुफादा. ये सारी पैदाइश ही हमारे पिता का घर है. ये जितने मुल्क हैं ये दे आर सो मेनी रूम्स इन दी हाउस ऑफ अरुफादा. ये मुख्तलिफ कमरे हैं हमारे उस पिता के घर में. जब सच्चे किया कोटली, तो जो हवाई जहाज है उन्होंने डिस्टेंस में एनिलेट कर दिया, खत्म कर दिया. आज यहां कल इंग्लैंड परसों अमेरिका पहुंच गया. तो हर एक जगह कहां जहां वो नहीं है वो पावर सबको आधार दे रही है. वो हमारी आत्मा की आत्मा है, बल्कि ये उसमें मैं बाहरी बंदों से आजाद हो तो ये वही उसी का इजहार. ये नजरिया है जो हम बड़ी अनुरूप पेश किया करते हैं. उनको सब प्यारे थे, वो कहते हैं मुझे सब प्यारे हैं. बंद करो भाई. तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरा पहलू जो अनमही पुरुष हमेशा दुनिया में आते हैं, उनको सारी दुनिया प्यारी. हजूर फरमाया करते थे मुझे हिंदू प्यारे हैं, सिख प्यारे हैं, मुसलमान प्यारे हैं. अरे भाई वो परमात्मा सब में है, हमारी आत्मा की आत्मा है. ये दौलत सब में है, जो निकाल ले उसी की है. और साथ ही फरमाया करते थे कि जब तक आप अंतर्मुख नहीं होते ये दौलत तुम में दबी आती और दबी चली जाती. भीखा भूखा को नहीं, सबकी गति लाओ, बिना खोल नहीं जानते तार से बहकला। आज ही दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, साफ के अंतर एक बड़ा देश की चीज बनी पड़ी है, क्योंकि हम जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसको खोल नहीं सकते, इसलिए उसे महरूम। तो किसी समाज में रहो, आपका आदर्श यही मुबारक है, वो समाज जिसमें रहकर आपने इस आदर्श को पा लिया, आपका जीवन सफल होगा। जिसने तक खत्म न चीने बावरी, त्याग करे चतुराई, जब हकीकत को नहीं पहचाना वो माल के कुल, जो घट घट सब का जीवन आधार, सब क्रिएशन का आधार है, अगर उसका अनुभव नहीं किया तो जीवन बर्बाद करे। यहाँ तक ध्यान किया है गुरु अमरदास जी साहब ने, त्रेग त्रेग खाया, त्रेग कहते हजार बार लाने को, त्रेग त्रेग सोया, त्रेग त्रेग कापड़ अंग चढ़ाया, जिसमी की बनावट सारी मुर्गुरा, त्रेग कुटुम्ब शरीर कुटुम्ब सहते, मुझे जीवन का पालने पर भी हर हर बार लानत है, सारे सिर से काम ठीक बनाए वो उस पर भी, त्रेग शरीर कुटुम्ब सहत तो जित हो खत्म न पाए। गुरु जी भागों से मिला है कि 84 लाख जिया जी उनकी सजा झूठ मानी जाती है, इसमें सबसे बड़ा काम है हम उसके अनुभव को पाना है, अगर ये नहीं पाया सारे काम किए कहते सारे कामों पर हजार लाख। तो मनु जीवन पाकर सबसे बड़ा आदर्श है, जब भी हम वही पहुंचाते वो ये नहीं कहते तुम दुनिया के काम ना करो, वो कहते तुम शरीर रखते हो जिसम को पालो, ये शरीर ही हरि मंदिर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। मतलब हम बाहरी मंदिरों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, बाहर से भी अंतर से भी, अरे भाई इस मंदिर को बाहर से तो बड़ा साफ सुथरा रखा है, माफ करना, लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक शहर में मुल्क में खर्च हो जाता, मरंतर से गलाजत से भरे पड़े हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली धड़ेबंदी दुश्मनी बकेली मोह माया में फंस रहे, गलाजत से भरे पड़े, अंदरों को सुधा कालियां बारह चिटुइयां ऋषा करे तिहारियां जो सेवन दर खड़ी, अंतर से गलाजत भरी पड़ी है, बाहर से बड़े चिकने चौपड़े हैं, अरे वे रीस उनकी करते जो बिल्कुल उससे मिले हुए हैं। तो ये रीस और एक्टिंग और पोजिंग का सवाल नहीं, हकीकत शनासी का सवाल है, जिसने अनुभव किया है वो सब अनुभवी पुरुषों की कदर करता। तो अगर सारे मजमू की धर्मपुत्रों का हमारे में शौक होगा मुताला करने का, हमें मालूम हम कहाँ खड़े, तो तय किया वो दो न हुई न दो हो सकती है, इसलिए वो कहते हम उसी एक के पुजारी। किसी समाज में आप पता है साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंसिस होती है कि नहीं, डॉक्टर की भी कॉन्फ्रेंसिस होती है, तो मुख्तलिफ समाजों के जोश के मायर इकट्ठे होते हैं, अरे अभी आत्मवेता पुरुष की क्यों नहीं होती, अरे आत्म तत्व आत्मवेता पुरुष है, उनका आपस में प्यार होगा, प्यार शराबी होंगे, अरे जिनको लिखा आया है काय किसी समाज के कितने गले लगकर बैठता। अगर हमको भी नशा उस प्रभु का है तो पुजारी उसी एक हकीकत की है ना, उसको राम कहो अल्लाह कहो किसी नाम से कहो, तो अगर हमें नशा हो तो गले लगकर क्यों ना बैठे, ना बैठने का कारण क्या है, या तो हमें डर रहा है कि हमारी सच्चाई सच्चाई नहीं, सच्चाई दो चार पांच छह भाई सच्चाई तो एक ही तो सिद्धवा, या ये कारण है तंगदिली और तासुब के कारण गर्दों की पट्टियां बंदी पड़ी हैं, भाई भाई के प्याले जुदा कर रहे हैं, पेट की खातर गर्दों के पूरा करने की खातर, जो लागर्ज होगा वही तुमको सच कहेगा, इसीलिए कहा है खत काल के सत होते नानक राप सन, जो खुद कमाई करता दूसरों को बांध कर खाता वो यकीकत करनी, जो दुनिया में ज्यादातर खुद गर्द लोग पट्टी बांध कर बैठे, ये झगड़े का है कि मैंने अभी अर्ज किया, देने वालों का कोई झगड़ा नहीं, लेने वालों का झगड़ा है, तो उधर भी महापुरुष आते हैं कहते हैं प्रभु के पुजारी सब मिलते सबके अंतर हकीकत है। अब उनमें क्लासेस नहीं की, उन्हें अपना जीवन डिवोट कर दिया किसी वर्ग के लिए कि लोगों की भलाई हो, वो तो बड़े थोड़े होते, आम दुनिया में रहकर उनको गाइड करने के लिए जिन्होंने दुनिया में रहकर गाइड किया है या उस हकीकत को पा लिया है, वो सबको कहते हैं भाई कितने लोग भूले हुए बच्चे सीधे रस्ते आ जाए, तो ये तीसरा संस्था जो उनकी जीवन से हम खास हो गए कि हम सब भाई भाई एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, कोई बंदा हो सब में हकीकत वही है, हर एक समाज में दाखिल होने की गर्द एक ही है, इसलिए आपको पता है ऑल वर्ल्ड में काम से श्री सुशील जी कुमार गुवाहाटी में बुलाए, ये बात नहीं हुई थी। पहले जमानों में भी मुस्लिम महात्मा बुलाते रहे, इस जमाने में इन्होंने ये पहला मैं अर्थ करूँ कदम उठाया हिन्दुस्तान में। बाहर जापान वगैरह में तो कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, उन्होंने भी कई मुल्कों को बुलाया है, जर्मन में भी कई कॉन्फ्रेंसेज हुई है, पर इन्होंने भी हिन्दुस्तान में पहला कदम उठाया है कि भाई भाई सब में बैठो। चुनाचे हर एक मुल्क के आए थे रिप्रेजेंटेटिव 260 के करीब, तो सबकी मिल बैठने से एक नतीजा पर पहुंचे कि भाई मिल बैठ सबके अंदर नतीजे तक किसी का दिल न दुखा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो यही तालीम हर एक महापुरुष ने अपने अपने तरीके से दी और अभी दी जा रही है। तो ये सीधा सबका है उनके जीवन में कि वो सबका प्यार रखते थे। वो कहते हैं हकीकत सब में ये बात तो कोई फर्क नहीं, तुम किस समाज में हो, संयम का जीवन बनाओ, इंद्रियों के घाट की पूरा हकीकत तुम्हारे अंदर उसको पाए। अब वो क्या तालीम की थी वो शाम का मजबूत होगा इस वक्त, और ज्यादा ध्यान करके वक्त में लगाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो सुशील जी आए हैं, हमको और ज्यादा कुछ टाइम मिलेगा, थोड़ा सा और जिक्र करके फिर इनसे अर्ज करेंगे, कुछ न कुछ फरमाएंगे। ये तीन सबक मैंने अर्ज किए, उनका अपना जीवन कैसे गुजरा। छोटी उम्र में आने आपको अर्ज की 25 वर्ष तक गुरु ब्रह्मचर्य रहा, पीछे भी 6 महीने शायद उनके घर वाली उनके साथ रही होगी सारी उम्र। आखिर 80-90 साल 1903 में बाबा जयमल सिंह महाराज ने चोला छोड़ा, उसके बाद 11 तक तो नौकरी में रहती हुई आकर उपदेश बाकायदा सत्संग का काम जारी रखा, और 11 में आकर रिटायर होकर 48 तक यानी 36 साल ये और 3 से 11 8 वो 44 साल के करीब निरोल सत्संग का ही काम किया। वो हमेशा फरमाया करते थे अगर मुझे गृहस्थी का नमूना देखना हो तो सबसे में आ जाओ, अगर त्यागी देखना हो तो देरी में आ जाओ। तो दोनों पहले उन्होंने चलाए, उन्होंने क्या तालीम दी ये शाम के वक्त आपके सामने ये मोटे मोटे बाहरी जो उनके जीवन से हम फायदा उठा सकते हैं वो ये है। सब ब्रह्मचर्य की रक्षा पहली चीज, सब धर्म पुरुषों का मुताला हम नजदीक आ जाएंगे, और सबसे प्यार, जब सबसे प्यार होगा तो कुदरती बात है जिससे प्यार हो उसको दुख नहीं देना चाहते, जिसे प्यार हो वो उसे तुम दुख देना चाहते हो कभी नहीं दो। आपको पता है दुखी आदमी किधर जाते जिधर प्यार हो। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक जगह जिक्र आया है कि एक बार एक शिकारी ने एक बृंदा की टांग लंगड़ी हो गई तो इन्होंने उसको उठा लिया, भाग कर इनकी तरफ आया। यादों का हर जीवन में आकर्षण शक्ति होती है, जिसके अंदर प्रेम हो सबको खींचता, प्रेम की धारे बहुत जबरदस्त है, रेशम की तारों से बड़े बारीक है मर जंजीरों से ज्यादा मजबूत होती, वो खाईती है पकड़ आ गया। मुकदमा पेश हुआ, बादशाह से लड़ते थे, कहे भाई बात फैसले की ये है इसको छोड़ जिस तरह से चाहिए उसी का। शिकारी कहे कि मैंने मारा मेरा है नकली मैंने किया, वो कहे नहीं कि मेरे पास आया तो प्रिंस को छोड़ दिया, किस तरह गया महात्मा बुद्ध की तरफ। भाई प्यार करो सबसे बड़ा प्रभु के पाने का जरिया, जिसका प्यार होगा उसको तो कभी नहीं दो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा उसी से होगी जिसका प्यार होगा, इसलिए अगर तुम प्यार करना सीख जाओ प्रेम करना तो काम बन जाए। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम। जहाँ प्रेम करो वहां तो दुनिया की तलवार चलती है एक चीज पर दो टुकड़े करती है, प्रेम की तलवार चलती है दो हिस्सों में एक रूप कर देती। तो सब महापुरुषों ने यही मोटी बातें बतलाई, उनकी क्या डिटेल में क्या साइंस थी वो शाम को फिर जिक्र होगा। इस वक्त मैं अर्ज करूंगा आपको।